सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के पुत्र हैं। प्रक्रिया है, किंतु ये भाव आता है जब यहाँ पर जैसे सारा पहलाव आता है सगरे गोविंद जी के दर्शन के लिए, इतना भी हो तो जगत में यह शांति नहीं है, किंतु ये जगत में शांति नहीं हो सकती है जो निश्चित है, ये कैद खाना है। जब से जब भगवान का स्मरण करके चिंतन और भजन करके नाम चिंतन करके जगत से जाना है और फिर नहीं लौटना है, ऐसा प्रतिज्ञा करके जाए और इसे जन्म में भगवान का भजन करके इसे जन्म भरने के चक्कर से छुटकारा पा फिर आना पड़ेगा। बहुत क्लेश की जगत में इसे भयंकर भयंकर रूप से आए, महाभारत युद्ध में क्या हुआ है, अभी क्या हुआ, करोड़ लोग रूप में आए, करोड़ स्त्रियां आए थे, हमारे यहाँ का बाण गिर गया, ये सब लुप्त हो गया, जो बाण चलाते थे ब्रह्मास्त्र चलाने में ऐसा जगत को खतरा पैदा हुआ, ऐसे ऐसे बाण हर वक्त ये विज्ञान की नीचे बड़ी भयंकर, ये तो बाण पर चलाते तो सर्प आ जाए, हवा आ जाए, आंधी आए, वर्षा आ जाए, ये सभी कुछ हो जाता है। विमान उन्होंने क्या विचार किया, इन लोगों ने हमारे वेदों से देख करके नकल की, जो हमारे वेद में लिखा है वो परम सत्य है, इस चीज को समझिए और भगवान का भजन निस्वार्थ होकर जैसा मैंने भक्ति की पर भरा। अब हम ये जगत में होता रहेगा, फसलों में से निश्चित होकर के भगवान की इच्छा को देकर कुछ नहीं हो सकता, यदि भगवान की इच्छा करनी है जगत को, ये देखो भगवान का नहीं भजन करने से ऐसा कितनी कितनी बार मैंने सारे संसार का ध्वंस हो गया, प्रलय हो गया, कोई नहीं बचा, इसमें तो मैं बहुत चांस बचे रहेंगे जितना जो कुछ होगा उसमें प्रलय कोई एक भी नहीं बचेगा प्राण, और तब वो लोग ब्रह्मा के माध्यम से फिर भगवान के शरीर से पहुंचे जाएंगे, पहुंच जाएंगे जब जिस लोग वो लोग अपने अपने पूर्व कर्मों से आकर के भक्ति संसार का करना आरम्भ कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए कुछ चिंता नहीं है। यदि मुक्त हो गए तो काल के लिए भगवान की सेवाओं में लग जाएंगे, तो इस जगत में आने की जरूरत है, वहां पर न तो जन्म है, न दुख है, न कोई है, न चिंता है, न प्रॉब्लम है, न कुछ है, वो ऐसा है गोविंद जी का नाम, गोविंद जी यहाँ पर उतर करके आने के लिए, हम लोग को ले आने के लिए, जो हम सबको लेकर के अपनी भक्ति दे करके अपना दर्शन दे करके ये राजा है, यहाँ पर रहेंगे उनका भक्त नहीं होगा, किंतु जिसको जिसको दर्शन देते हैं भक्ति देते हैं उसको कुछ पा लें जो वहां से मतलब हो। अब मैं अपनी कथा पर आ रहा हूं, कल की कथा हमने जोड़ी थी, कृष्ण उद्धव को भेज रहे हैं वृंदावन में प्रज और उनके कारण शांत करेगा उनका भी, यह भूल जाओ, मैं जो कुछ कहा वही कहना ठीक ठीक वही कहना। कोई भी चीज बनाओ की किताब जाकर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मैं जो संदेश दे रहा हूं तुम्हें एक ही नहीं करना। इस संदेश से यदि नहीं शांत हो तो ये संदेश देना, इससे ना हो तो ये देना, ये नहीं है तो ये देना। पर ऐसे संदेश कृष्ण ऐसा संदेश जिसका अर्थ कृष्ण ही समझते हैं और वो क्या नहीं समझ सकते। उद्धव को संदेश दिया किंतु उद्धव की नहीं समझ सकते। इसलिए जो कृष्ण ने कहा है ये काना वही काना, यहाँ पर कृष्ण तो भेज रहे हैं उसको। कृष्ण सोचा बहुत दिन हो गए मथुरा में आया है, किंतु मथुरा को मैं यही यही जटिल नहीं है कि हमारे दुख और दर्द को समझे। गोपियों को हमारे मैया पिता माता को विरह है, किंतु उनके दुखों को बांट लेने वाले बहुत से लोग हैं। वो क्या एक परस्पर व्यक्तित्व को समझाती है, राधा जी को समझाती है। आ जाए दुख दर्द समझते हैं वो एक दूसरे का। नंद बाबा का भी दुख समझने वाला होना है, इसलिए वो बात करके बांट लेते हैं दुख दर्द। किंतु मथुरा में भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण के गोपियों का विरह समझ सके। कोई नहीं, मथुरा को भी है कोई नहीं। कृष्ण कितने दुखी हैं अपने मैया बाप के लिए, ब्रजवासियों के लिए, गोवर्धन के लिए, यमुना के लिए, अपने सखाओं के लिए, गोपियों के लिए, विशेष करके चंद्रावन और श्रीमती राधिका और भी क्या राधिका के लिए। वो कोई दुख नहीं है। एक स्त्री का यदि अत्यंत प्रियतम पति मर जाए, वो विलाप करते करते वो चित्त रह हो रही है, दूसरे उसको समझा रहे हैं, उनको उतना दुख नहीं आए तभी समझा रहे हैं, उनको भी इतना ही दुख होता तो समझाते थोड़े। तो राधिका कोंडिया नंद बाबा को समझाने वाले जो लोग हैं उतना दुख नहीं जिनको गोपियों को विशेष करके राधिका है, वो तो एकदम दुख होकर के पड़ी है। मरीज की बच्ची के लिए बहुत लोग लज्जा जताते हैं प्राण धान पर, आज नफल जरूर हुआ है। लज्जा जी को इतना दुख नहीं है जितना राधा जी को है। कृष्ण का दुख और भी अधिक है, बहुत अधिक समझने वाला को। इसलिए कहते हैं भारत पति कृष्ण ने प्राया प्राणा अपने प्राणों को बहुत कठिनता से ये लोग धारण कर रहे हैं। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये तो प्रेम है गोपियों का, गोपियों का प्रेम जब तक आदमी नहीं समझेंगे मरम्मत हो रहा है। तो कृष्ण सोच रहे हैं किसको अधिक शोक या मोह होता है, किसको विरह होगा, जिसको अधिक प्रेम होगा। तो जो प्रेम जाएगा तो उसी को तो दुख होगा विरह होगा। उद्धव जी इस चीज को समझता नहीं है, अभिमान है, प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा, इसलिए इसको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वही पर देना होगा उसी पाठशाला में जहां पर मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा। कृष्ण कहां पर प्रेम का पाठ किए, कहां पर पढ़े,
गोपियों की पाठशाला में,
कहां पर पाठ, जहां पर श्रीमती राधिका प्रधान अध्यापिका प्रिंसिपल है, बच्चा दिखाता है इत्यादि डिपार्टमेंट का
छोटे
आठ सौ आठ विषय के लिए, और उसमें सौ करोड़ गोपियों एक एक डिपार्टमेंट का वो हेड है, और उसमें नीचे के ऊपर तक सभी कक्षाओं में कृष्ण पढ़े। अभी उनकी पूरी पढ़ाई भी नहीं हुई थी इसलिए वृंदावन को मथुरा आ जाना, तो उसी प्रेम की पाठशाला में यदि उनको भेजूं तो प्रेम कुछ पूरा तो समझना मुश्किल है। तो अभी कुछ न कुछ पाठ पढ़ने में तो अपने हृदय का जो दुख है विरह से मैं कुछ चुका करके अपने दुख को विरह को मैं बांट दूंगा। असल इनका ये तात्पर्य था, इसलिए उद्भव और उद्धव जी कितने सफल हुए, जब लौटेंगे तब कृष्ण की परीक्षा करेंगे तब मालूम होगा। वो परीक्षा हम पीछे दिलवाए, पहले अभी आगे जाएंगे कैसे गए। उद्धव जी जब वहां पर पहुंचे, कृष्ण रास्ते में ही कृष्ण बतला रहे हैं, देखो वहां जाकर के प्रणाम करना नंद बाबा को, और कहना के लिए कृष्ण प्रणाम कर रहा है, तू प्रणाम नहीं कर रहा, कहने के कृष्ण का ये दाऊ जी का प्रणाम, उनको सांत्वना देना मेरे संदेशों से, अपने किसी संदेश से व्याख्या के द्वारा मत चेष्टा कर। और उसने बहुत सी हिदायतें उनको दी, समझाया गोपियों से कैसे बात करना, उनके आश्रम दिए हुए आश्रम पर मत बैठना, उनकी चरणभूमि की वंदना करना, और कौन कौन से रास्ता जाना है ये रास्ता भी बदला है। उद्धव जी ने देखा ये बड़ी जोर से रो रहे हैं, यदि मैं और देरी पर लाते ही रोते रहे, रथ पर नहीं बैठे, इसलिए कृष्ण को प्रणाम करके उनकी चरण की दूरी सिर पर ली, यह हमारा जाना सफल हो, मैं उनको सांत्वना देकर के कृष्ण के पास में लौट, इसलिए वहां पर रथ पर बैठे और घोड़ों को जरा जोर से हाँक दिया, घोड़े हवा की तरफ उड़ करके अब चले। नंद बाबा की तरफ उन समय नंद बाबा नंद गोकुल वहीं पर था, इसलिए वहां पर रास्ते में जबकि नंद गांव के समीप में देखे लाखों कृष्ण के चरण चिन्ह वहां पर पड़े, एक चरण पारी में उसको चरण की थी, उद्धव जी रथ से उतर करके उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके धीरे धीरे रथ से उतर गए, और इतने में शांत हो गई। नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचने के पहले उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा, देखा क्या, जितने वाल है बड़े आनंद में खड़े थे, गोपियां बड़ी प्रसन्न है, और उसमें अपने घरों पर उन्हें गतिमंथन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर सूसी तल खीर से जलता था, प्रत्येक चारों तरफ में जलता है, और प्रत्येक घर से बड़ी सुगंध भिन्नी भिन्नी सुगंध आ रही है, चारों तरफ में घोड़े मंडरा रहे हैं फूलों के ऊपर, सब चारों तरफ में बसंत की दिखाई, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गायें जिनका स्थान एकदम जमीन से लगा हुआ स्थान लगा हुआ, कुदरते हुए बछड़े को देखा, मानो कृष्ण ब्रज में से नहीं गए हैं, मथुरा नहीं गए हैं, वो ब्रज में ही है, इसलिए चारों तरफ में आनंद। ये जोग माया ने कृष्ण की इच्छा से उद्धव को ये दिखलाया, देखो मैं ब्रज में रहता था तो ऐसी दशा थी, इसलिए मानो ब्रज एकदम पहले जैसा कृष्ण जब थे वैसा ही ये दिखलाया कि मैं ब्रज को छोड़कर के नहीं हूं, मैं बलदेव भैया के साथ में ब्रज ही नंद बाबा के साथ में लौट आया, ये दृश्य दिखला दिया। जो मैंने पहले कहा था कि एक प्रकोष्ठ में एक तरह से नंद बाबा जो कृष्ण और बलदेव जी हो, किंतु ये किसी को दिखा नहीं, भगवान की इच्छा से जो माया दिखला सकती है, अभी भी कृष्ण वृंदावन में ब्रज में ही गैया चराते हैं, रास करते हैं, और सब जाएंगे यहां पर हो रही है, कोई कोई भाग्यवान ही देख सकता है, जिनके आंखों से मैं माया पर्दा उठा देती हूँ, देखकर जब उद्धव के सब हो गए कृष्ण तुमको मथुरा में मिले, जब हो तो थोड़ा सा पाए थे आंटी, तुम तो संपूर्ण रूप से यही ब्रज में हो, और उनको नमस्कार किया, नमस्कार करके उनको दृष्टि संत रख दिया, देखा था चारा ब्रज उजाड़ सब लोग कृष्ण के लिए बड़े खुशी, और वो बाबा जी से एकदम नहीं रहा, मानो सारी सारा ब्रज जैसे पीछू हो गया, पीछवा हो गया, सभी लोग कृष्ण के फिर में तड़प रहे हैं, ऊपर से नीचे तड़प, उद्धव जी नंद बाबा के दरवाजे पर किसी बच्चे ने खबर दी कोई मकसद है, उसका नाम उद्धव है, उद्धव जी जानते कृष्ण का ये भी एक कथा है, हमारे भैया का लड़का है, झट बाहर आए और आते हैं लोग चरणों में भी पड़े, उसको उठाया गले से लगाया, आंखें चक्कर आ गई, गला रुक्त हो गया, किसी प्रकार के घर में ले गए, हाथ पैर धुलवाए, उनको कुछ खिलाने की जरूरत है, आया है बहुत देर से, किंतु घर में कुछ नहीं है, रोटी तो बनती नहीं थी इसके लिए मैंने कल ही बतलाया था, मकर सोने जाल नहीं रखा, संपूर्ण से भर गया है, रसोई घर में पात्र कौन से पड़े हैं, यशोदा मैया अपने होश हवास में नहीं है, किसी प्रकार से जीविका निर्वाह है, किस प्रकार से कर दिन रात कर रहे हैं, इसलिए घर में तो कुछ है नहीं, नौ लाख आए का कुछ भी आज नहीं सुना जा रहा है, नहीं घर में आ रहा, कौन सुहे कौन क्या है, गायन दूसरों ने भी बंद कर दिया, बचपन को भी संघ के पास में नहीं, बचड़े भी नहीं आते, कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं नंद बाबा ने, इसीलिए सदा को बोले जरा जाओ तो किसी ब्राह्मण के यहां से थोड़ा सा खीर बना बहुत बताए, ब्राह्मण के घर में गए, क्यों उनको इतना शोक शोक नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, ब्राह्मण लोगों को कुछ तत्व ज्ञान रहता है, वो कृष्ण को भगवान को वो ऐसा समझते हैं, इनके हृदय में पीड़ा नहीं रहेगा, इसलिए उनके घर में भेजा, उनके घर में सबका तो था नहीं, किसी प्रकार से दूध में किसी प्रकार की उबाल करके खीर लाए, किंतु मीठा बिना मीठा का खीर लाया, किसी प्रकार से उनको दिया, भूख तो बड़ी लगी थी, सवेरे के चले शाम को पहुंचे हैं, इसलिए कुछ थोड़ा सा लिया, किंतु नंद बाबा का जो सुख दिशा में रहने का वो इनको सुख से बैठाने के बाद पूछना चाहते कि हमारा लाला कैसा है, ये कहना चाह रहे हैं किंतु गला भरा है नहीं बोल सके, मेरा लाला कहते हैं आंखों में आंसू गिरने लगे, झर 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 कर गला भी रूप हो गया, हृदय झटने लगा, किसी तरह से उपचार नहीं कर सके, घंटे तक स्थिर नहीं हो सके, किसी तरह से मन को हाथ स्थिर करके कुछ बोले भी तो बोले थे, हमारा भैया रहता है बसदेव जी भैया कहते उसकी सारी संतानें मरी, फिर तो उसके बाद में उसको खत्म कर दिया, बहुत तो बहुत इधर उधर की बातें करने पर बहुत कृष्ण की बातें आती याद आती, अंत में ये बोलना चाहते थे ये हमारा लाला कहता है, कृष्ण कहता है, कन्हैया कहता है, कृष्ण कहता है, बातें करते हैं कहता नहीं कर सके, कुशल नहीं पूछ सके, बस उतने में नहीं एकदम जोर जोर से रोने लगे, रोने लगे, रोते रोते बिहार हो गए, उन्होंने कहा हाँ मैं उसको भूलने के लिए मैं जंगल में जाता हूं, किंतु साफ कर उसके चरण चिन्ह उसको देकर के और किरण के जन लेता, गोवर्धन में जाता हूं तो वो देखता हूं वहां पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर कृष्ण के चरण और कृष्ण की लीलाएं हैं, गोवर्धन खुद रोकता है, वृंदावन में जाता हूं घूमने के लिए नदी के किनारे जमुना, जमुना जी खुद ही रो रही है और उसकी लीलाएं रुला रही है सबको, कहीं भी काम करना उद्धव जी कहते मैं कैसे समझाऊं उनको, रो मत, इसलिए तो आए सांत्वना देने के लिए रो मत, किंतु कह नहीं पाए, सोचते हैं यदि ऐसा कहता हूं तो शास्त्र हमारा कला दौड़ देंगे, ऐसा मत कहो, संसार में आदमी अपने बंधुओं के लिए पति के लिए पुत्र के लिए और दूसरे के लिए यदि रोता है तो हम कहते हैं कि शांत हो जाओ, ये जगत का ऐसा नियम है तुम रो मत, किंतु कृष्ण के लिए यदि किसी के एक बुद्ध आप भगवान गोविंद के लिए यदि जिए तो कोई कायदा जी मत रहो गोविंद के लिए, ये तो परम सौभाग्य की बात होगी, यदि कृष्ण के लिए आंखों में आंसू आ जाए परम सौभाग्य की बात, अरे आपके आंसू की बात करते हैं, यदि कोई कृष्ण का बिना चिंतन कर रहा हो उसका नाम करता है तो उसका परम सौभाग्य है, और जो कृष्ण के लिए रो रहा हो तड़प करके रो रहा हो विरक्त रो करके मूर्छित हो रहा हो तब उसके चरणों को सुनेंगे उसके चरण को सुनेंगे उसी का जीवन संसार में छोटा बना। उसके साथ ही मुझे सफल है। इसलिए कहते मैं इसको कैसे कहूँ कि वो मत लिखने के लिए मैं भी उठा तो पढ़ा दिया, किंतु मेरे को रुलाई नहीं आ रही, आंसू नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरा हृदय बच्चे प्रसुता बना, मैं मर नहीं जाता अभी तक। मैं फिर सोचते हैं तो मैं क्या बोलो, ये तो कहा नहीं जा सकता, खुद खुद को कह रहे हो तो मैं क्या कहूँ, जरो मरो मनो मैं दोनों में से कौन सा उनके दिमाग में नहीं आया, जो बृहस्पति के शिष्य हैं समस्त शिष्य उन्हें पारंगत हैं, बोलने में भी गुण हैं, कृष्ण के सखा हैं, मंत्री हैं, परिषद हैं, सभी कुछ हैं, दास हैं, प्रभु हैं, उनके दिमाग में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, जरो खुद खुद करो या हो जाओ सोचने। अंत में सोच करके ये बोले, शास्त्र तो निर्विघ्न रूप में अभिसंवादित रूप में कह रहे हैं कि कृष्ण के लिए रोना बड़ा अच्छा है, इसलिए उन्होंने बस यही कहा। जरा संक्षेप ही में कर रहा हूं, आज तो कथा के लिए पूर्णमासी है, आज हमारी कथा गोविंद देव जी की इस वर्ष के लिए इस यात्रा के लिए तो आज ही समापन करना होगा। पीछे गोविंद जी हमने कहा ना कि यदि बुलाएंगे कभी अपनी सेवा देने के लिए, अपनी प्रिय कथा सुनने के लिए, गोपियों की महिमा सुनने के लिए, तो फिर हम देखेंगे, विचार करेंगे, हम सहर्ष आने के लिए तैयार हैं। जब गोविंद जी वादा करें कि हम तुमको राधा जी की दासी बना देंगे, अभी समय है कि हो गया है 5 मिनट है और उन्होंने कहा युवा श्लाघतम नूनम देही नाम मानद नारायणी अखिल गुरु जस्ता मंत्र की भी मतरी ओहो आप और चतुर्दा भैया इन दोनों का जन्म आज सफल मनुष्य मनुष्य देश हासिल करके आज तक ऐसा जीवन किसी का सफल नहीं हुआ। महा महा सौभाग्यवान आप लोग हैं जो अखिल गुरु जो नारायण स्वरूप जो कृष्ण है उनके प्रति ऐसा अनुराग, ऐसा अनुराग हमने जीवन में कहीं नहीं देखा। ऐसा हम एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी है मानो ये अनुराग, और उद्धव जी भी मथुरा की टोपी पहन करके जाए हैं वहां देखने के लिए एवरेस्ट उसके नीचे खड़े हो, हिमालय आजकल शायद 7 मील ऊंचा करीब करीब, जब वहां से नीचे देखा ऐसे तो वो टोपी गिर गई, मथुरा की टोपी गिर गई, मथुरा वहां देखकर के आज करके कितना ऊंचा ये नंद बाबा का सुधा मैया का प्रेम कितना है था नहीं लगा। जब उन्होंने कहा कि आप महा सौभाग्यवान है दोनों, नंद बाबा बोलते हैं कि बेटा मैं सोचता हूं तुम्हारे अकल की दान आ गई, किंतु मैं देखा कि तुमको अकल का दान भी अभी नहीं आया, अभी बच्चे का गुरु का जो दान होता है तुमको अकल समझ नहीं है। अरे कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो तो बड़ा चतुर है, बातों में सबको ठग देता है, किंतु तुमको चतुराई नहीं आई, कोई बुद्धिमत्ता नहीं आई, मैं देखता हूं कि तुम कोरे क्या हो का हो अकल साबित नहीं है। अरे तुम हमको सौभाग्यवान समझता है जो जगत में सबसे बड़ा गुरु खा रहा है और उसको तुम महाभारत अपना है मोदी भरे और भरे तुम कहें क्या ये नंबर, हमने तो बात तो ठीक की, गति तो कहीं सही नहीं, शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारे आचार्य लोग कहते हैं, भगवान भी आचार्य तो भी नंद बाबा क्या कर रहे हैं। इसलिए सुनने लगे बड़े सावधानी के साथ नंद बाबा कहते हैं संसार में दुर्भाग्य कौन है जानता है, हमारे जैसा जो छोटा जैसा दुर्भाग्य जो हम आज तक नहीं लिया। अरे तुम कहते हो जिस भगवान तुम्हारे घर में आए हैं आए और वो रहे तुम्हारे घर में और उनके प्रति तुम्हारा इतना अनुराग है, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम कह रहे बेटे तुमको मैं समझाता हूं यदि दुर्भाग्य हो तुम्हें क्यों, तुम कहते हैं कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारा दादा बेटा नहीं है, ये कन्हैया तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है लीला करके बच्चे का रूप धारण करके तुम्हारे घर, अब तक तो मैं कृष्ण को अपना बच्चा बन गया, उसका काम मैं करता, अपनी जुक्ति लाने के लिए उसे कहता था और उसे दंड देता था, इसकी मैया उसको दंड देती थी कुलब्रह्म को, और तुमने कह दिया कि वो पराब्रह्म है, ये तो भाई हमारा सुधार है, ऐसे प्रसव धर्म घर में आए हमारे और उनको मैं प्रेम दे प्यार लाया प्यार नहीं दे सका, मैं उस योग्य नहीं था, इसीलिए वो हमारे घर से चले, इसलिए बताओ तो मैं कितना सुधारा हूँ कि भगवान आकर के भी हमारे घर में नहीं गए। देखो जगत में एक पिता थे और एक ही पिता थे और हमें कर, वो थे राम के पिता दशरथ, बेटा चला गया के कारण से बाहर, तब कहा हाँ राम किसी बार हाँ राम नहीं कहा, हाँ कहते हैं राम को छोड़ दिया, प्रेम को तो आया था किंतु मैं मर नहीं गया, जो कृष्ण हमारे यहाँ से चला गया आज मथुरा में, मैं मर नहीं रहा, मैं जिन ब्रह्मा जी ने क्या सोच करके मेरा घर व्यापक सब जैसा बनाया है, जो अभी तक मैं मर नहीं गया, हाँ ऐसा कह देता हूँ नंद बाबा की अवस्था देख करके बड़े असंभव है, क्यों हमने कहा हमारा कहना गलती हो गया, तो कहने लगे मैं किसी को कहता कर रहा है क्या कृष्ण का संदेश तो सुनाना था मुझे, मैं नहीं सुना था, सेकंड तरह से सोचने लगे फिर आगे क्या हुआ, जय श्री गोविंद और उद्धव नए पाते हो गए, उनके प्रेम का था आए थे सांत्वना देने के लिए, किंतु नंद बाबा का मिला और कोटि कोटि गुण बढ़ गया, जिसको भूलने की चेष्टा कर रहे थे वो धैर्य धीरे धीरे सभी बातें उनको स्मरण होने लगी, धैर्य को टाया, अंत में वो चित्तों को देखे पड़े थे, देश की भी कुछ बोली गई, सवेरा हो गया, एक बरस के लिए भी किसी ने सोया नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा घर में रहे और उद्धव जी वहां से स्नान करने के लिए कुंड में गए, पार्टी कुंड है और उनका नाम है कृष्ण कुंड, नंद बाबा के मन के पार्टी में पूरा की ओर है, वहां पर उन्होंने स्नान किया और स्नान करके अंगी किया, आने करके जब उठते हैं देखा क्या गंभीर अशोक का कदम का बन है, बड़ा सघन बन, उसमें किसी का जाना बड़ा भारी कठिन है, वे वहां से मन में प्रवेश करने लगे, देखा अशोक कृष्ण करोड़ों करोड़ों गोपियां जिनके बटन मैले हो गए, कपड़े लपड़े गंदे हो गए हैं, उनके आंखों से और भूमि से वहां वृष्टि हुई है और सभी दिनों में चढ़ रहे हैं, कोई एक गोपी पूछ रही है अपनी पति को, अरे मैंने सुना कि अपूर खीर सोने के उसी रथ में चढ़ करके आए जिसमें हमारे प्राण प्रियतम को वो हर ले गया मथुरा में, कहते हाँ हमने सुना वो रथ पर आए, कृष्ण ने अपने दूध को सोने के रथ पर बैठा करके भेजा है, जानते हो किस लिए, यह दिखलाने के लिए कि तुम्हारा वो वाद्या बेटा नहीं रहा, अब वहां का राजा हो गया है कभी को मार करके, इसलिए हमारा नौकर क्या था दूध भी सोने के रथ में चढ़ करके तुमको सांत्वना देने के लिए जा रहा, देखो अब तुम्हारा बेटा कैसा हो गया, मथुरा का राजा उसका नाम तो क्या था, सोने के रथों में चलते हैं उसकी तो बात क्या, यही दिखलाने के लिए शायद भेजा है सोने के रथ पर, उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण ने हमको दिया, मैंने ग्रहण कर लिया, ये सोने का रथ उसमें मैं आया हूँ, ये तो मेरी बड़ी भारी गलती थी, पृथ्वी के लिए फट जाते उसमें अंदर में मैं समा जाता तो कोई समाधान निकल जाता, बड़ी सच्चा की बात है, हमको समझाने के लिए आना था, ब्रज में सोने के रथ में क्यों चढ़ कर गया, इतनी बुद्धि हमको नहीं गई, दूसरी कहती है जानती हो किस लिए आया है, इसका क्या जरूरत है, यहाँ आने की जरूरत कुछ और है, ये अपूर्ण क्रू है, अपूर्ण तो नाम अपूर्व है, जिनको है यथार्थ में महाभारत क्रू क्रू है, इसके समान संसार में कोई क्रू नहीं, अब यह आया है इसकी जरूरत कुछ यहाँ है, इसलिए कि इसका मालिक संत मारा गया है। मध्य के बाद में पैरावी होती है, पिंड दान करना होता है हमारे हिंदुओं में, आजकल का बोल चल रहा है कि दिन पक्ष लिया गया कि समाप्त हो गया चल रहा है, तो पृथ्वी पक्ष में पिंड लोग देते हैं, गोल गोल करके पिंड देते हैं, तो ये आया है कि मर गया संत तो पैरावी आ गई है, इसलिए ये पिंड देना है, वहां पिंड नहीं मिला ये आया वृंदावन में, जब कृष्ण के गिराने सब परिवासी मर गए होंगे, गोपियां मर गई होंगे, गोपी मर गए होंगे, इसलिए उसका हटपिंड निकाल करके हम के लिए हम रवि में कह दिए है, हमको ये सब बातें सुननी पड़ रही, गोपियां गिरा में मर जाएंगी, और ये आया है अपूर्व माने उद्धव हमारा हटपिंड निकालने के लिए, और ये कंस के चेहरे में नसीब दे दिया जाए, ऐसी ऐसी बातें सुन करके बड़ी खुशी हुई। थोड़ी देर के बाद में एक गोपी कह रही जानते ये कौन है, दोस्त कहते क्यों नहीं उसको पहचाने, ये तो सिर्फ पर तो कहते ये उसी कपटी धूप का ये धूप है, तो कैसे समझ दिया, इसलिए समझा इसको तो हमने देखा कभी नहीं, कभी नहीं देखा, किंतु इसलिए कि हमारी नाके भूल नहीं कर सकते, कभी भूल नहीं करेंगे, ये कृष्ण का माला वैज्ञानिक माला लेकर पहन करके आया है, और उसने अपना पिताम्बर पहना दिया है, और अपने अलंकार इत्यादि धारण करा दिया है, तो कृष्ण के अंगों में एक अपूर्व जो सुगंध है अपने आप वो इस माला में बाधित हो गया, वस्त्र में बाधित हो गया, लग गई, इसलिए इसका सुगंध जब आया तो हमने नहीं कृष्ण ही चाहिए कपड़ा है, उद्धव कहते थे कृष्ण कहते हैं क्या रंग है, देखने में क्या नहीं, एक बोल वो भी कहे कि ये तो श्याम है कि वो श्याम नहीं है, मतलब क्या श्याम तो श्यामला तो है किंतु वो श्याम नहीं है, ये देखो समाज वृक्ष को देखने से श्रीमती राधिका अलिंगन करने दौड़ती है, अगर श्याम है कृष्ण है उसे हंसती है, मैंने कैसे कैसी बातें करती, आजकल देखने में उनके समान वृक्ष को देख करके दौड़ करके अलिंगन नहीं करती है श्याम मानकर, क्यों उनका प्रेम ही उनकी रक्षा करता है, कभी भी जो नैतिक चीजें नहीं होने दे सकता, ये ऐसा कृष्ण प्रेम है, मर्यादा को भंग नहीं करने लगा, ये प्रेम ही एक ऐसी स्थिति है, इसलिए उनको इसका आकाश को तो कृष्ण समझती है, समाज को अंधकार को कृष्ण समझती है, किंतु श्याम जैसा ही श्याम भी उनका मित्र भी किंतु उसको श्याम नहीं मान दिया, आदि तक कर रहे हैं, तो सभी कह रही है देखो इसको क्या जरूरत नहीं आने, कोई जरूरत अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए भेजना दास को भेजे थे तो वहां पर जाता है, यहाँ पर हम लोगों के पास नहीं जवा है, ये शायद रास्ता भूल करके आए, अन्यथा इसकी यहाँ जरूरत क्या है, देखो कोई भी हो अपने माता पिता को भूल नहीं सकता, क्योंकि माता पिता ने रक्त भी देते हैं, बेटा का शरीर बनता है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े में प्रत्येक अंग प्रत्यंग मिट्टी का ही होता है, इसलिए माता पिता से ही उसका शरीर बनता है, मन बनता है, इसलिए कृष्ण यदि छोड़कर के नहीं चले जाएगा तो माता पिता को कैसे संबंध छोड़ता है, संबंध छोड़ने पर भी वो माता पिता का संबंध जाएगा नहीं, इसलिए ये माता पिता को सांत्वना देने के लिए हो सकता है, किंतु हमसे तो संबंध मन तो संबंध था और नहीं था, तो उसने संबंध तोड़ लिया तो हम लोगों ने भी संबंध तोड़ लिया, ये तो मानने का था क्रिया क्रिया तत्काल लव है विलंबन का, संबंध जो होता है वो क्या है मन पर है, विवाह तो हुआ नहीं, भाव तो पड़े नहीं, साक्षी तो कोई है नहीं, तो हम लोगों ने इसको प्रियतम समझा, उन लोगों ने हमको प्रियतम आ समझा, कृष्ण ने संबंध था कोई तो, और अंततः को संबंध है कि